मुख्य समाचारों में, न्यू साउथ वेल्स में 283 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए और एक मौत। क्षेत्रीय विक्टोरिया में आज मध्यरात्रि से तालाबंदी हटेगी। और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय चर्चा की अध्यक्षता। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसारण के 283 अन्य मामले और एक अन्य मौत की पुष्टि की गई है। मृत्यु 90 वर्ष की आयु की दशक में एक महिला की थी जो पैलिएटिव केयर में थी और उसे टीका नहीं लगाया गया था। नए मामलों में से कम 64 संक्रामक स्थिति में समुदाय में मौजूद थे। प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन का कहना है कि कैंटरबरी, बैंक्सटाउन स्थानीय सरकारी क्षेत्र अभी भी ग्रेटर सिडनी के प्रकोप का केंद्र हैं।
We are seeing some stabilization in other local government areas, but that local government area is proving to demonstrate the virus is still circulating. And we also ask people in those adjoining suburbs to the Canterbury-Bankstown local government area to especially be on high alert. That remains the greatest challenge for us, and it's where the compliance, the police are focusing their efforts as well to make sure people are doing the right thing.
इस बीच टैमवर्थ आज शाम 5 बजे से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन में चला जाएगा। एक न्यूकासल की महिला जो कोविड-19 के संपर्क में थी, उसने पिछले गुरुवार को न्यूकासल से इस क्षेत्रीय शहर की यात्रा की। टैमवर्थ में अब तक किसी भी मामले का पता नहीं चला है, लेकिन जो कोई भी पुष्टिकृत एक्सपोजर साइट्स में शामिल हुआ है, उसे परीक्षण और अलग थलग करने की आवश्यकता है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चेंट का कहना है कि बायरन बे क्षेत्र में 50 के दशक की आयु में एक व्यक्ति ने भी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है।
Investigations are underway to determine his source of infection. We understand he did travel from Sydney earlier in towards the end of July. He is currently being re-interviewed and we are also arranging urgent testing of his two household contacts.
क्षेत्रीय विक्टोरिया में आज रात मध्यरात्रि से लॉकडाउन हट जाएगा। स्टे एट होम ऑर्डर्स हटा दिए जाएंगे और क्षेत्रीय विक्टोरिया के लोगों के लिए यात्रा करने की दूरी की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन महानगर मेलबर्न में लोग कम से कम गुरुवार 12 अगस्त तक लॉकडाउन में रहेंगे, क्योंकि राज्य में कोविड-19 के 11 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। प्रीमियर डेनियल एंड्रूज का कहना है कि क्षेत्रों में प्रतिबंधों को कम करने के लिए वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नवीनतम प्रकोप के दौरान वहाँ कोई नया मामला नहीं आया है।
And indeed retailers and other businesses who are providing goods and services will be relying on them, as we have in the past, to be establishing the address of any customers. So there's no point going to regional Victoria. You won't be able to buy so much as a litre of milk without establishing that you're from regional Victoria.
Victoria ke COVID-19 commander Joroin Weimer ka kehna hai ki unhe vishwas hai ki tikakaran daron mein vriddhi jari rahegi. विक्टोरिया को प्रतिबंधों और लॉकडाउन को कम करने के लिए उन्होंने 70% टीकाकरण की बात को दोहराया।
All of our projections are that the vaccination will speed up as more supply becomes available, and we've seen that consistently in Victoria. We were first in with the high volumes on vaccination. We've done the highest volumes of any state through our state clinics, and as more vaccine becomes available, so the 150,000 doses that the Premier secured the other day will be taken up, I expect, very quickly in the next few weeks.
क्वींसलैंड में कोरोना वायरस के 4 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामलों का पता चला है। वो सभी अपनी पूरी संक्रामक अवधि के दौरान संगरोध में थे और इंड्रोपेली क्लस्टर से जुड़े हुए हैं। जनोमिक अनुक्रमण से पता चलता है कि केन्स टैक्सी ड्राइवर, जो कई दिनों से समुदाय में संक्रामक था, उसने एक समुद्री पायलट से कोविड-19 को अनुबंधित किया। उस पायलट ने पिछले सप्ताह सकारात्मक परीक्षण किया था। प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे का कहना है कि यह अच्छा है कि मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
I know that Cairns is in that 3-day lockdown, and we hope that everyone is doing the right thing.
It's really important if you're in Cairns to be staying at home and only going out for those essential purposes. So we want to make sure that we get all of those contacts from the taxi driver into home quarantine as quickly as possible to keep that community safe.
राष्ट्रीय टीकाकरण लक्ष्यों पर फिर से चर्चा की जा रही है. विक्टोरियन प्रीमियर डेनियल एंड्रूस ने कहा है कि वो अपने न्यू साउथ वेल्स समकक्ष ग्लैडिस बेरी जिकलियन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर टिप्पणी नहीं कर सकते. सुश्री बेरी जिकलियन ने कहा है कि उनके राज्य में 50% टीकाकरण लक्ष्य तक पहुंचने के बाद कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है. श्री एंड्रयूज का कहना है कि वो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का पालन करेंगे जिसमें सभी सहमत थे कि राष्ट्रीय आबादी के 70-80% के टीकाकरण के बाद विभिन्न प्रतिबंधों और लॉकडाउन में ढील दी जाएगी.
Look, I've seen some reports of that. I can only go by what the Premier has made clear to all of her national cabinet colleagues on Friday. They may be in a position to ease some rules in some weeks' time. I wouldn't describe that as opening up. We have an agreed national cabinet framework, and that is that they can't open up. Nobody can open up and move to the next phase until we're all at 70%. Then there'll be further steps to take as a nation once we're to 80%. All of us, because of supply, we're all a long way away from those numbers.
ऑस्ट्रेलियाई इस बीच तीसरे कोरोनावायरस वैक्सीन के बारे में जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसकी आने वाले हफ्तों में देश के वैक्सीन रोल आउट में शामिल होने की उम्मीद है. चिकित्सीय सामान प्रशासन से उम्मीद है कि वो अगले महीने 1 मिलियन खुराक आने के बाद 16 से अधिक आयु के लोगों के लिए मैडोना वैक्सीन को मंजूरी देगा. अगर दवा नियामक ये मंजूरी देता है तो ये कंपनी 6 महीने तक के बच्चों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया को एक परीक्षण देश के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री साइमन बर्मिंघम ने कहा कि सरकार अंततः सभी उम्र के लोगों को रोल आउट में शामिल करना चाहती है. जापानी शहर नागासाकी आज दुनिया की दूसरी परमाणु बमबारी के 76 वर्ष पूरे कर रहा है. 9 अगस्त 1945 को बमबारी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा होरिशिमा पर अपना पहला परमाणु बम गिराए जाने के 3 दिन बाद हुई थी. नागासाकी बम से बचे लोगों और निवासियों ने आज 11:02 पर 1 मिनट का मौन रखा. ये वही क्षण था जब शहर पर 4.5 टन प्लूटोनियम बम गिराया गया था जिसमें 70,000 से अधिक लोग मारे गए थे. नागासाकी के मेयर तोमिहिसा ताऊ ने राष्ट्रों से परमाणु हथियारों से खुद को मुक्त करने और वैश्विक लक्ष्य की दिशा में काम करने का आह्वान किया.
I hereby appeal to the leaders of nuclear-armed nations and countries under their nuclear umbrellas. You must face the reality that thinking nuclear weapons are necessary to defend your countries under nuclear deterrence actually makes the world a more dangerous place. I ask you to see that substantial progress towards nuclear disarmament is made at the next NPT review conference, starting with greater steps by the US and Russia to reduce nuclear weapons.
और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली चर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसका विषय है समुद्री सुरक्षा का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मामला. भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा परिषद में ये बहस ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारतीय नौसेना अगस्त की शुरुआत में 2 महीने से अधिक समय के लिए दक्षिण चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया जल क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों से युक्त एक नौसैनिक कार्य समूह तैयार कर रही है. इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में अपनी स्थिति को मजबूत करना है. भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस परिचर्चा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वहां की सरकारों के शामिल होने की संभावना है. भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि कोई एक देश समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की चिंता नहीं कर सकता, इसीलिए UNSC में इसे व्यापक विषय के रूप में आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा में एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा हो सके और साथ ही समुद्री क्षेत्र के पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटा जा सके. जैसा कि विदित है, यूएनएससी में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। वर्तमान में भारत 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 73 सेंट और भारत के 54.61 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में, पेरिस में एफिल टावर के पास ओलंपिक ध्वज सौंपे जाने का स्वागत करने के लिए हजारों लोग जमा हुए हैं। पेरिस 2024 में खेलों की मेजबानी करेगा। जेट विमानों के एक फ्लाईओवर ने राजधानी के आसमान में नीला, सफ़ेद और लाल रंग का धुआं छोड़ा, जो फ्रांसीसी ध्वज के रंग थे। ये आयोजन टोक्यो खेलों के समापन समारोह के दौरान हुआ, जिसका उद्देश्य दर्शकों की अनुपस्थिति के बावजूद जश्न का माहौल बनाना था। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को पर्थ में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में सुबह के समय धूप रहेगी, हवाएं चलेंगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।